एक छोटा सा सवाल लिखिए, फिर उसका जवाब खुद से सोचें, फिर मैं भी आपसे पूछूंगी। अगर आपको पता चल जाए कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप आज के दिन को कैसे इस्तेमाल करेंगी? नमाज़ पढ़नी शुरू कर देंगी, सदका करने की कोशिश करेंगी, इस्तग़फार करेंगी? गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है आपका, वेरी गुड। और तौबा और इस्तग़फार करेंगी, कोशिश करेंगी कि कोई सेकंड भी ज़ाया ना हो। जी, आप पीछे से पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगेंगी सब।
अगर तो कुरान को ना जानते होते तो फिर तो दुनियादारी में करते।
जी, बहुत अच्छी बात कही कि अगर कुरान ना जानते तो हो सकता है फ़ौरन 24 घंटे में बच्चों के रिश्ते कहीं ढूंढते, कहीं घर के चाबियां किसी के नाम करते, छुपाई हुई दौलत शौहर को बताते, इधर रखी हुई है उधर रखी हुई है, ये कुछ करते ना। लेकिन अब तरजीहात बदल गई। जी शाबाश, बहुत अच्छी बात है कि इंसानी मामलात में माफ़ी मांगती, फ़ोन पे बैठ जाते और कहते कि भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और जी केयर, आप ये कह लें कि एक एक घड़ी ही देखती रहती सारा वक्त, सजदे में पड़ जाएंगी ताकि मौत आए तो सजदे में आए। आपको पता है ये सवाल बड़ों से किए गए थे। दो लोगों की बात मुझे याद है, एक बुज़ुर्ग थे तो उनसे किसी ने कहा कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मौत का वक्त बिल्कुल करीब है तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं इल्म का कोई बाब सीखने लग जाऊंगा, इल्म हासिल करने लग जाऊंगा, ताकि मुझे इल्म हासिल करते हुए मौत आए। और हदीस में आता है कि जिसको तलब इल्म के दौरान मौत आई वो घर में बिस्तर पे भी मरेगा तो वो शहीद है। एक और बुज़ुर्ग थे, उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा कि मुझे कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती कि मैं क्या करूँ, मैं वही करूँगा जो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि हर वक्त को आखिरी वक्त समझ के, हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के और हर वक्त को आखिरी वक्त समझ के इस्तेमाल करें। हमारी ज़िंदगी कहाँ गुजरती है कभी सोचें? चले हम थोड़ा सा खेलते हैं, सिर्फ अपने शौर को, चूँकि हम छेड़छाड़ कर रहे हैं ना इस वक्त, सेम कंडीशन है। मुझे पता है आज का दिन मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मुझे आज शाम को किसी गेट टुगेदर में बुलाया हो जहाँ खूब अच्छा खाना होगा, फ़न की चीज़ें होंगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, वहाँ नफ्स की ख्वाहिश को पूरे करने के समान है। लिखें और सोचें और ख़ुद से पूछें कि क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगी? कितने लोग हैं वो कहते हैं कि स्टिल जाएंगे हम, गो के हमें पता है कि रात 12 बजे के साथ ही हम इंतकाल करने वाले हैं, क्यों नहीं जाएंगे आप? देखिए, अब फिर यहाँ मैं आपको रोकती हूँ, आप कहते हैं हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अब पता चल रहा है कि आज हमारे पास 24 आवर्स हैं। तो मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि 24 सेकेंड भी हैं कि नहीं। अंडरस्टैंड किया? ये तो बड़ा खुशकिस्मत है कोई बंदा जिसको ये कह दे कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, हमारे पास तो वो भी नहीं है। लोग कहते हैं हाय फुला, डॉक्टर्स ने उसको कह दिया बस तुम 3 महीने जियोगे। सुनते अक्सर कैंसर के मरीज़ के बारे में लोग ये जुमले बोलते हैं, मैं कहती हूँ मुबारक हो आपको, बड़े खुशकिस्मत हैं आप, आपको तो डॉक्टर ने कह दिया आप 3 महीने जियेंगे, मुझे तो वो भी नहीं कहा उसने। कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत। यकीन करें हमारे चलने का अंदाज़ बदल जाए, हमारे कामों को लेने का अंदाज़ बदल जाए, हमारे नेकियों के मौाक़े को एक्सेप्ट करने का अंदाज़ बदल जाए, हम रात चलते नेकियां बखेरते जाएं, गुनाहों के कांटे अपनी ज़िंदगी से तोड़ते जाएं, नींद आएगी। चले एक और शऊर को हिलाने वाली बात, मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ आज का दिन आखिरी है, क्या मैं मज़े से कम्फर्टर डाल के खूब अच्छा हीटिंग का सिस्टम करके या अगर गर्मी है तो एसी लगा के और कोई भी ऐसा काम जो मुझे रिलैक्स करे, क्या मैं सोना पसंद करूँगी? आप में से कितने लोग हैं जो सो जाएंगे? किसी को नहीं नींद आएगी, तो अब कैसे आती है? हमें नमाज से जब सुबह उठाया जाता है सलात तो खैरुम मिनन नौम, तो क्या वो नौम मौत वाली नौम नहीं हो सकती? जितने तरीके से भी इसको समझ जाएं, आखिर में बात यह है कि वक्त कीमती तरीन मता है, खर्च हो गया वापस नहीं आएगा। एक और हमारे यहाँ जुमला बड़ा मारूफ है कि जी वक्त तो सोना है, ये वक्त की नाकदरी है। सोना कैसे है? सोने की तो वैल्यू कभी बढ़ती कभी झड़ती कभी कटती है, यानी ये इंतहाई नाकदरी की बात है। असल बात है कि सोने को तो कोई मिसाल नहीं मिलती, यानी सोने का तो कोई ताल्लुक नहीं है ज़िंदगी से। अल्लाह सुबहान ताला ने हर एक को मुख्तलिफ तरीके से काम बनाने के लिए दुनिया में भेजा है और वो ये काम करता है। एक बहुत ही प्यारे तफसीर करने वाले इमाम राजी थे, फ़ख्रुद्दीन राजी उनका नाम है, सूरत असर की तफसीर में लिखते हैं कि असर یعنی زمانہ وہ ظرف ہے. ظرف کہتے ہیں برتن کو. ذہن میں لے آئیے کوئی بڑا سا تسلا، کوئی ڈونگا، ہاں. کہتے ہیں عصر وہ برتن ہے جس کے اندر حیرت انگیز واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس کے اندر انسان سب کچھ کرتا ہے، تنگی، ترشی، سختی، نرمی، تنگ دستی، فاقہ مستی اسی برتن میں جاتا ہے. اس لیے عمر انسانی کے اوقات بڑے قیمتی ہیں. یعنی ہمارا سب کچھ جو 24 گھنٹے جا رہا ہے وہ اس وقت کے برتن میں ہی جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور مفسر ہیں ابو الفتاح، کہتے ہیں خسران اور محرومی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی اور ساری فرصتیں عمر برباد کر دی. ان کے لیے وقت ضائع ہوا، ورنہ جو استعمال کر کے ان کے لیے تو وہ وقت صدقہ جاریہ کی صورت میں، ما قدم ہوا سارہم کی صورت میں ڈھل گیا. زندگی گزر جاتی ہے اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. اسی طرح سورہ فرقان کے آیت 72 میں عباد الرحمن کی ایک صفت آتی ہے کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر جب ان کا گزر ہوتا ہے تو شریف لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں. مرو کراما، مرو کراما کے وقت ضائع نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں وقت بیکار چیزیں دیکھنے اور سننے اور پڑھنے کا. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابن عباس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ پورا فائدہ نہیں اٹھاتے. نمبر ایک صحت اور دوسری فرصت. صحت ہوتی ہے ایسے لگتا ہے ہمیشہ صحت مند رہیں گے. بیمار ہوتے ہیں، چھوڑیں بیماری کو، صرف سر میں درد لگ جائے، آپ میری اس بات کو باوجود اس کے کہ آپ اس کو اپنے لیے بہت ضروری محسوس کریں، آپ فوکس نہیں کر پائیں گی. اور اسی طرح وقت، فرصت کو. ترمذی کی ایک روایت ابن مسعود سے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عنه خمسة، ابن آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے. پہلا سوال، ان عمری ہی فی ما افنا، عمر کہاں ضائع کی، کہاں خرچ کی، فنا کر دی، کل من علیہا فان والا لفظ. دوسرا، ان شباب ہی فی ما ابلا، جوانی کہاں پرانی کی. دیکھیے جوانی سے بڑھاپا کیسے آتا ہے، وقت کے ساتھ آ رہا ہے نا. آپ روک سکتے ہیں، اچھی خوراک کھا لیں، آپ اچھے انوائرمنٹ میں رہیں، سٹریس فری لائف گزاریں، کیا آپ کی جوانی رک جائے گی؟ وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، اس کے اوپر آپ کی جوانی پڑی ہوئی ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں، ہر چکر کے ساتھ چہرے پہ جھری آ رہی ہے، بال سفید ہو رہا ہے، جسم میں کمزوریاں آ رہی ہیں، تو جوانیاں پرانی ہو رہی ہیں. تیسرا سوال، مال کے بارے میں، منعینہ تصبہ ہو، اور چوتھا میں نئی نان فق ہو، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور پانچواں سوال، ماذا عمل بما علم، اس پہ عمل کتنا کیا جو علم حاصل کیا تھا. اسی طرح وقت کی اہمیت احادیث کے بعد ہم تھوڑی سی صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں گے. حضرت ابو بکر صدیق دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کہا کرتے تھے، اللہ ہمیں کہیں اندھیروں میں نہ رہنے دے، ہماری کج فہمیوں پر ہمیں نہ پکڑ، یعنی ہم بات کو سمجھیں نہیں، ٹیڑھی سوچ سے بچا، نگیٹو مائنڈیڈ ہونے سے بچا، اور ہمیں وقت سے بے پرواہی کرنے والا نہ بنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے اوقات میں برکت فرما، یعنی میرے وقت میں برکت دے، اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے، یعنی میں اس کو صحیح طرح استعمال کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت کی دعا امت کے لیے کی، اور وہ کیا، سحری کا وقت. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سحریوں کے وقت میں برکت دے دی گئی. اور یہ بات آج ہی آپ لکھ لیں، ابھی شروع کے قدم ہیں آپ کے اس کورس میں چڑھنے کے. میں اور آپ اور ہم سب اگر خود کو خوش بھی رکھنا چاہتے ہیں، پیچھے آ جائیں، وہی مائنڈ میپ بنا لیجیے اپنے ذہن میں، بیچ میں آپ ہیں، رسہ کشی ہے، 7-8 چیزیں کھینچ رہی ہیں، آپ اور میں اس میں احسن درجے سے سبک دوش نہیں ان ذمہ داریوں سے ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنی فجر کے بعد کو وقت چوز نہ کریں. یہ میں بھی ہوں اور یہ آپ بھی ہیں، یہ مسجد کے امام صاحب بھی ہیں اور یہ مقتدی صاحب بھی ہیں، اور دنیا کے آئنسٹائن یا نیوٹن جیسے لوگ ہیں. جس نے صبح کے وقت کو یوز کیا وہ مطمئن بھی رہے گا، مسرور بھی رہے گا، خوش بھی رہے گا. हम जब रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं ना, तो हम अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा निकाल देते हैं। एक बड़ा होश गुम करने वाला आपको एनालिसिस करवाती हूँ, ताकि शायद हम इसको महसूस करें। कर लें आप इसी के साथ, अपने साथ खुद घर से करके लाएंगे। ये भी होमवर्क में आप, यानी आपके एक्टिविटीज में आएगा। 24 घंटे हैं ना आपके पास, आप 24 घंटे का ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन का मतलब है कि छोटे छोटे पीसीस में करें उसको। पूरे 24 घंटे में टोटल सोने का टाइम आपका कितना है, एंटरटेनमेंट का कितना है, खाना पकाने का, घरदारी का कितना है, खाने का कितना है, इबादात का कितना है, मामलात का कितना है, वो पूरे 5 फैक्ट्स दीन के जो है ना, इबादात, मामलात, जिम्मेदारियाँ, इन सब को बांट के आप लोग करके रिटर्न फॉर्म में आप ये सब कुछ लिख के लाएंगे। मुझे तो ये पता है कि होश गुम हो जाते हैं। अगर आप देखें रात को, अगर आप 10 बजे भी सोते हैं ना, चलिए 10:30 भी सोते हैं, फजर 5 पे 4:30 भी आप उठ जाते हैं ना, तो आप देखिए कि 7 घंटे तो हमारे यही हो जाते हैं। 7 घंटे के बाद दिन में अगर 1 घंटा लगा लें इधर उधर कर करा के, 8 घंटे अगर हम सोते हैं ना 24 घंटे में, तो अगर आपकी उम्र इस वक्त 30 साल है, तो आप उसका 1/3 सो के गुजार चुकी हैं। एक पूरा मैंने एक जगह किया था, अगर मिला कहीं तो आपके लिए भी लेके आ जाऊंगी दोबारा, कि जिसमें उन्होंने सर्वेस किए हुए, और अमेरिकन्स का एक सर्वे था कि एवरेज अमेरिकन अपनी ज़िंदगी का, अगर उसकी ज़िंदगी 30 साल हो तो इतनी कि 8-10 साल टीवी देखते हुए गुजार देता है, इतना वक्त सोते में गुजार देता है, और इसी तरह के फिगर्स हर एक अपने बना ले, किसी से क्या पूछने। एक हफ्ता आप अपने साथ कोई ऐसा थर्मामीटर लगाएं जो आपके वक्त को नोट करे। थर्मा तो थर्मो से है ना, बिजली को, वो हीट को देखता है। आप इसको टाइम मीटर कह लें, टाइम बॉम्ब समझे अपने वक्त को। और ये कोई नहीं कर सकता जब तक आप ना करें। हमारा टाइम लोग क्यों लेते हैं जब हम केयरलेस होते हैं? क्या मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप सबके पर्स में जितने पैसे हैं या मेरे पर्स में, क्या हम जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं और जो हम माशाल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्या हम में से कोई एक बंदा ये कह सकता है कि हम उठ के फौरन किसी के पर्स में से कुछ पैसे उठा के यूज़ कर लें फिर दे देंगे बाद में? हम पर्स को हाथ भी लगाते हैं किसी के, अकेला पड़ा हो कोई ना हो पास, जरूरत हो सकती है हम में से किसी की कि किसी का पर्स खोल लें और उसका नोट निकाल लें? हम में से कोई किसी की चूड़ी उतार के ले जा सकता है कि मैं इसको बेच दूँ? तो फिर मेरा वक्त क्यों लोग ले जाते हैं? मेरी सबसे कीमती चीज़ कोई क्यों ले? मैं वजह बनती हूँ लोगों को अपने वक्त की दौलत लुटाने की। चलो बैठो, बातें करते हैं। चंद बातें इसमें आपके सामने और रखती हूँ। आमिर बिन कैस एक ताबई थे। सहाबा किराम की बात की है तो अब थोड़ी सी ताबईन के बाद कुछ बुज़ुर्गों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी बात तो बहरहाल एक सदका जारी होते हैं। आमिर बिन कैस एक ताबई थे। एक शख्स ने इनसे कहा, आओ बैठकर बातें करते हैं। कहने लगे, अच्छा फिर सूरज को भी ठहरा लो, यानी अगर सूरज रुकता है, वक्त का पहिया रुक जाता है, तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के बातें करता हूँ, और अगर सूरज घूम रहा है तो मैं बेकार बातों में वक्त ज़ाया नहीं करता। अब इस जुमले और इस वाक्य के नीचे ज़रा बैठ के शादी हॉलों की दा बातें, टेलीफोन टॉक्स, सिर्फ बेकार बातें, यकीन करें आप हैरान कुन हद तक अपने आप को डिस्कवर कर लेंगे इस कोर्स में, अगर आपने करना चाहा। कितना वक्त हम ज़ाया करते हैं इसको हम सब देख सकते हैं। किसी का कॉल है, कहते हैं कि बताओ ए हज़रत इंसान, ख़ुद को कहा करते थे, ए इंसान तुम ये तो बताओ, ज़िंदगी इस वक्त के अलावा किस चीज़ का नाम है जिसे तुम अपनी पैदाइश से वफात तक काम में लाते हो? सोना हाथ से निकल जाता है लेकिन इसे दोबारा हासिल कर सकते हो, और इसे कई गुना ज़्यादा पा सकते हो जितना तुमसे खो गया, मगर जो ज़माना गुजर जाता है या वक्त बीत जाता है, तुम उसे लौटा नहीं सकते न दोबारा ले सकते। इसलिए वक्त सोने चांदी हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये ज़िंदगी का दूसरा नाम है। असल बात यह कि कामयाब इंसान वो होता है जो बारीक बीनी से मनसूबा बंदी करके काम शुरू कर दे, हालात मुवाफिक हों के ना हों, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाज़ चलते हुए देखा करें, मैं अक्सर जब जहाज़ में बैठूं कभी तो उनकी वो देखती रहती हैं, अब इतने मिनट रह गए, अब इतने बजे पहुंचेंगे, अक्सर आपने देखा स्लाइड चलती हैं। मैं सोचती हूँ कैसे इनको इतना यकीन है। आप यहाँ लोकल बस पे जाके बैठ के देख लें, मिनट सेकंड पे उनके वहाँ स्टॉप्स होते हैं, 2-3 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने निकलना होता है क्योंकि अगले पे पहुँचना है। प्लानिंग का नाम है। हम क्यों नहीं कर पाते, हमारी प्लानिंग नहीं होती। इसी तरह किसी का कॉल है, कहते हैं कि अरबी का कॉल है, अस अल वक्त अस सैफुल काते, कहते हैं कि वक्त तलवार की तरह है, यानी जो काट रही है, तलवार हर वक्त काट रही होती है ना, तो ये वक्त तुम्हें काट रहा है। अल्लाह ताला कहता है तुम्हें मौत आने वाली है, किसी भी वक्त तुम्हें मौत आ जाएगी, तो तुम उस वक्त इससे अपने आप को पीछे नहीं रखोगे। एक और किसी का कॉल, कहते हैं जिसने वक्त का हक पहचान लिया उसने ज़िंदगी की हकीकत पा ली, क्योंकि वक्त ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। जुनेद बगदादी का नाम सुना होगा, कहा करते थे कि वक्त और इख्तसाब क्या है, कि तुम हर लम्हे ये देखते रहो कि अल्लाह से कितने करीब हुए हो, शैतान से कितने दूर हुए हो, जन्नत से कितने करीब हुए हो और दोजख से कितने दूर हुए हो। हम किन चीज़ों के करीब और दूर होने को सोचते हैं। इसी तरह चंद बातें कुछ वेस्टर्न थिंकर्स की, क्योंकि अच्छी बात अच्छी ही होती है। सेंट ऑगस्टिन 605 में इनकी डेथ हुई थी, इसने किताब लिखी है इंग्लिश में कन्फेशन के नाम पे। कन्फेस करना ऐसे होता है जैसे इतराफ़ करना, कि मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करता हूँ। इसमें ये लिखते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि वक्त क्या है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकूँगा, यानी मैं बता ही नहीं पाऊँगा वक्त क्या चीज़ है। लेकिन कोई ना पूछे तो मुझे मालूम है कि वक्त किसे कहते हैं और इसकी तारीफ़ क्या होती है, यानी किसी को बताने का वक्त भी ज़ाया नहीं करूँगा। फिर इस तरह सर आइज़क न्यूटन थे, कहते हैं वक्त एक समंदर है जिसमें कायनात का जहाज़ तैर रहा है। इसी तरह बास लोग कहते हैं कि वक्त हमारे तजुर्बात और अवामिल का एक हिस्सा है। जो हम तजुर्बा हासिल कर लेते हैं, जो अमल कर लेते हैं, वही वक्त होता है, बाकी तो ज़ाया हो गया। वक्त की कदर कीमत करने वाले कौन थे? आज हम अपने आप को किन लोगों से नस्बत दें? एक बात तो पीछे बता दी आपको, आमिर बिन कैस की, किसी ने कहा वो बातें करें तो कहा सूरज को भी रोक लो। इसी तरह एक वाक्या इमाम बुखारी के उस्तादों में से एक उस्ताद थे मोहम्मद बिन सलाम। एक वक्त एक दफ़ा काम कर रहे थे तो उनका कलम टूट गया। अब आप इमेजिन करें, आप लिखने बैठी और आपकी इंक ख़त्म हो गई या पेन काम नहीं करा। वहीं बैठे बैठे उन्होंने सदा लगाई, कौन है जो मुझको नया कलम एक दीनार के बदले दे। दीनार सोने की एक अमाउंट होती है, आज आप कह सकते हैं कि कई लाखों की वैल्यू होगी। लोगों ने जब बात सुनी उन पर कलमों की बारिश कर दी, कौन ना ले एक कलम को इतना महंगा। लोगों ने कहा कि एक पेन जो थोड़ी सी मेहनत से आप उठ के कहीं और जाते और ले आते और दे देते तो आपको इतना सस्ता मिलता, आपने उसको एक दीनार में क्यों लिया। कहने लगे कि अगर मैं इसको ख़रीदने में वक्त ज़ाया कर देता तो ख्यालात का जो तसलसल मेरे जहन में था ना, वो टूट जाता, तो मैंने उस चीज़ को कैच करने के लिए हर कीमत पे पेन लेना शुरू कर दिया। हमारा एक जुमला बहुत बोलते हैं, कहते हैं ये काम करो हर कीमत पे, सुनते हर कीमत पे ये करना पड़ेगा। वक्त की कीमत को इतना भी नहीं जानते। ख़तीब बगदादी का नाम आपने सुना होगा, बहुत मारूफ, इन्होंने तारीख़ बगदाद लिखी है। वहाँ उसमें एक वाक्य लिखते हैं, जाहिस नाम के एक शख्स थे, पैसे नहीं होते थे पास कि किताबें ख़रीदें। किताबें बेचने वाले एक शख्स के पास गए, कहा कि देखो तुम तो रात को दुकान बंद करके चले जाते हो ना, तो मुझे रात के वक्त के लिए अपनी दुकान किराए पे दे दो। कहा तुम क्या करोगे? कहा मैं रात को बैठ के तुम्हारे बुक स्टोर में किताबें पढ़ूंगा और सुबह जब तुम आओगे तो मैं चले जाऊंगा। इतना शौक़ था वक्त की कदर पहचानने वालों को। इसी तरह फ़तेह बिन खाकान अब्बासी दौर के खलीफा थे, अलमुतवक्किल के वज़ीर थे, हर वक्त अपनी बगल में कोई ना कोई किताब रखते। जब उनको सरकारी कामों से ज़रा सी फुर्सत मिलती तो किताब निकाल के पढ़ने लगते। आज की किताबें तो क्लिक्स पे हैं, एक क्लिक करें आपकी किताबों के ढेर लगते हैं। کب آخری کتاب پڑھی؟ اس پہ تم بعد میں کبھی پھر بات کریں گے، لیکن وقت کی اہمیت کو بہرحال ذہن پہ رکھیں۔ اسماعیل بن اسحاق کے بارے میں آتا ہے، جب کوئی ان کے گھر جاتا تو ان کو پڑھنے میں مصروف پاتا، یعنی وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ ابن رشد کہتے ہیں، پوری زندگی صرف دو راتیں ایسی گزری ہیں کہ میں مطالعہ نہیں کر سکا، ورنہ میں نے ہر رات مطالعہ کیا۔ ابن جریر کا نام سنا؟ کہاں سنا ہوگا۔ تفسیر طبری، عربی کی تفسیر ہے، سسٹر مریم شڈ نو۔ اتنی خوبصورت تفسیر ہے، ہر دن 14 صفحے لکھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی فائدے جو مجھے ہو یا دوسرے کو اس کے بغیر نہیں گزارا۔ یا اپنا کام کرو یا دوسرے کا کرو، ہمیں 5 صفحے لکھنے پڑے ہم کہتے ہیں اٹس ٹو مچ۔ اسی طرح البیرونی کا نام تو سنا ہی ہوگا بہت سارے لوگوں نے۔ علم کا حال کیا تھا کہ مرض الموت میں چند منٹ پہلے اپنی موت سے کسی فقیر سے جو ان کی مزاج پرسی کے لیے آیا تھا، علم الفرائض کا مسئلہ پوچھنے لگ گئے، وراثت کے مسئلے پوچھ رہے تھے۔ اسی طرح ہم تو عموماً وقت ضائع کرتے ہیں کھانے پینے میں نا، ہمارا کھانا پینا بھی ہمارے وقت کے ضیاع کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا۔ امام غزالی کے استادوں میں ایک استاد تھے، ابو المعالی ان کا نام تھا، کہا کرتے تھے کہ میں سونے اور کھانے کا عادی نہیں ہوں۔ ہمیں تو پہلی فکر ہوتی ہے نا، رات کو کیا کھائیں، کہتے ہیں مجھے کوئی عادت نہیں، مجھ کو دن اور رات میں جب کبھی تھوڑی نیند آتی ہے سو جاتا ہوں، اور جب بھوک لگتی ہے تو تھوڑا کھا لیتا ہوں، اور میرا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا پڑھنا ہے مطالعہ، یہ کام ایسے نہیں ہوتے۔ امام ابن جوزی کا نام سنا ہوگا، معروف کتاب ہے ان کی، تلبیس ابلیس۔ تقریباً 1000 چھوٹی بڑی کتابیں جو تھی انہوں نے لکھی، اپنی عمر کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں کیا، ایک لمحہ نہیں۔ اچھا، اس دور میں لوگ قلموں سے لکھتے تھے نا، کبھی آپ نے بھی بچپن میں تختی پہ قلم کے ساتھ لکھا ہوگا، قلم کو تراشنا پڑتا ہے، اس کے جو تراشے نکلتے ان کو سنبھال دیتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، انہی لکڑی کے تراشوں کو جمع کر کے آگ لگائی، اسی میں پانی گرم کر کے ان کو غسل دیا گیا۔ اور اپنی کتاب الخاطر میں کہتے ہیں، افسوس ہے ان لوگوں پر جو کھیل تماشوں میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر بلا مقصد گھومتے رہتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ کر ادھر ادھر آنے جانے والوں کو گھورتے رہتے ہیں، اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر باتیں کرتے ہیں۔ آج ہمارا کیا پسندیدہ شغل کیا، آج ہمارے 40s 50s کے بٹوین کے لوگوں کا، پہلے خبریں سنتے ہیں پھر تبصرے۔ آپ کسی دعوت میں بیٹھے ہوئے مرد حضرات، ان کا بعد میں موضوع سخن پوچھیں، پالیٹیشن حکمرانوں کی باتیں، کوئی زلزلہ آ گیا اس کو ڈسکس کریں، اور صرف تیر اور تکے چلانے کی بات ہے، کتنا قیمتی وقت ہے۔ عورتوں کو دیکھیں تو چلے فیشن کی اور کھانوں کی باتیں کریں گی، شعور کے ساتھ وقت کتنا گزرتا ہے۔ میں سوچتی ہوں، جس چیز کے لیے، بعض دفعہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم دین کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، دین آتا ہے تو ہم چل پڑتے ہیں، اب ہم چلتے ہیں، اب وقت کوئی نہیں ہے، اور ادھر ادھر کی چیزوں کا نام، ایکٹیویٹیز کا نام ہم نے دین رکھا ہوا ہے۔ ایک آخری بات، شہاب الدین محمود تھے، بہت ہی بڑے مفسر قرآن تھے، تفسیر آلوسی بھی انہوں نے لکھی۔ اپنی رات کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے، پہلے حصے میں آرام کرتے، دوسرے حصے میں اللہ کو یاد کرتے، اور تیسرے حصے میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتے۔ راتوں کو جاگے بغیر دین پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں ہو سکتا۔ دن میں وہی بات ہے، انا لکف نہار سب ہن طویلا، اللہ اپنے نبی کو کیوں کہتے تھے قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر رات کو اٹھیے بیٹھیے، کیونکہ دن میں بڑے کام ہیں، فوکس ہی نہیں ہو پاتا، آپ کا ذہن اس طرح مختلف دائروں میں گھومتا ہے کہ انسان حقیقت میں اپنے آپ کو بہت بے بس پاتا ہے۔ تو اتنی بات سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی، 3 لوگ شیئر کریں۔ ایسٹیمیٹ کر کے ٹائم دیں چیزوں کو، پلاننگ کریں، پہلے اسکیڈول بنائیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ریئلسٹکلی اتنے ہی وقت میں پورا کریں۔ وقت پورا ہو جائے نا، چیز نہ ہو پوری، چھوڑ دیں کہ آپ کل کروں گی، آج کا حصہ ختم ہو گیا۔ جیسے آپ اپنے لیے مطالعے کا ایک وقت مقرر کر سکتی ہیں، آپ کو اس کورس میں بہت زیادہ عادت مطالعے کی بھی ڈالنی ہے، किताबें घरों में जो जंग आलूद पड़ी हैं, झाड़ी मिट्टी झाड़ने की जरूरत, उनको झाड़े, आदत डाले, अपना फर्ज समझे। 15 मिनट, 5 मिनट, छोटी बात। 5 नमाजों के बाद क्या हर नमाज के बाद एक सफ़ा नहीं पढ़ सकते? जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ छोटा सा कोई बुकलेट रखे, खाने की टेबल पे आप कोई ऐसी चीज़ देख के पढ़ सकते हैं जिस वक्त पे आपकी नज़रें सिर्फ जाएं और आप पढ़ सकें। क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताएं, कर सकते हैं? क्या आपको ये एहसास हुआ कि जो मैं कर रही हूँ उससे मैं ज़्यादा कर सकती हूँ? कितना को ये एहसास हुआ? तो फिर हमें ये शिकवा तो नहीं करना ना कि काम बहुत है वक्त कम है। जब भी आप ये सोचें ना कि काम बहुत है वक्त कम है, तो आप सोचें आपकी स्पीड कम है, या आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, या आप खाने पीने पे बहुत तवज्जो देते हैं, या आपको सोना बड़ा पसंद है, या बेकार कामों में होते हैं। हम इंशाल्लाह अगली नशिस्तों में करते रहेंगे इस पे बात, टाइम को कैसे मैनेज करना है और वक्त, क्योंकि ये चीज़ समझ आएगी तभी बाकी चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे। जिस चीज़ में थोड़ा वक्त लगाना होता है उसमें ज़्यादा लगा देते हैं, और जहाँ ज़्यादा लगाना होता है उसके लिए वक्त ही कोई नहीं बचता। अमूमन कैसे ही नहीं होता हमारे साथ। अगर आपकी ज़िंदगी में ये पिछला 1.5-2 साल ना होता कोर्स का और यही बातें हम सुनते, तो ज़्यादा शर्मसारी होती खुद से? खुद सोचिए, बस यही जो इस वक्त हम कर रहे हैं ना अपना, यही मौत के बाद फरिश्तों ने हमारा करना है। नथिंग इज़ न्यू, हिसाब भी इसी का नाम है। मुनकर नकीर की हाजिरी, उम्र के सवाल, क्या करके आए हो सुनाओ। देखिए, आप एक होता है कुछ खुद ही जोड़ तोड़ करके हिसाब किताब लिख लेते हैं ना, यहाँ खर्च किया, इसको दिया, उसको लिया, ये किया, और वही चीज़ कोई दूसरा पूछ लेता है तो रिपोर्ट होती है, ऐसे ही होता है ना। शौहर पूछ ले तो हिसाब करना देना होता है। हासिबो कबल अन तहासबो, हजरत उमर फरमाया करते थे, लोगों अपना हिसाब खुद ले लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अब इस वक्त हम वक्त का हिसाब लेने बैठे हुए हैं ना, इंशाल्लाह एक एक नेमत का हिसाब ले लेंगे, वक्त के साथ काम चलता रहेगा। यहाँ पे रुकेंगे, पहले अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर इस पे मज़ीद बात होती रहेगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वतूबु इलैक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलअस्र, إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر